الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اس سے، اور نہ تمہیں موت آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. یاری بہنوں، آج آپ کو ایک بہت اہم موضوع کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں جو ہالوین سے متعلق ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے امریکہ میں کئی ایسی چیزوں سے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، ہماری فیملیز ایکسپوز ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے دین میں بالکل ان کی گنجائش نہیں ہے. اور ہم ایک بظاہر بڑا ہی بے ضرر اور فن قسم کا تہوار، جس کو ہم بڑا معصوم سمجھ کے منانے لگتے ہیں، بچوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، مگر لا علمی میں ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کس قدر مشرکانہ عقائد ہیں جن کا لوگوں کو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آج انہی کی طرف میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ آپ سمجھیں کہ ہالوین کیا چیز ہے، اور ہمارا دین ہمیں بے سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو پر چلنے کو نہیں کہتا، کہ اندھی تقلید ہمارے دین میں نہیں ہے، کہ بالکل اندھوں کی طرح جو دیکھا جیسا دیکھا ویسے ہی کرنے لگے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک تم ایک دوسرے اہل کتاب کے پیچھے ایسے نہیں چلنے لگو کہ ہاتھ بہ ہاتھ، قدم بہ قدم تم ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ یہ لوگ اگر گو کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم وہاں پہ بھی ان کے پیچھے جاؤ گے. تو کیا آج وہی وقت نہیں آ گیا کہ ہم اندھا دھن تقلید کرنے میں لگے ہوئے، اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عقائد ہیں، کیا طریقے ہیں ان لوگوں کے؟ تھوڑا سا آپ کو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے. آپ جو بھی میں باتیں کہوں، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات پہ یقین کریں، آپ جا سکتے ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں اس میں سے آپ کو سمجھ میں جو آئی ہیں کہ کیا کیا باتیں اس میں سے صحیح ہیں. آپ بالکل ہر چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہ سب میٹیریل انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو وہاں پہ ضرور جا کے چیک کریں اور خود بھی اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں. میں نے بہت ساری سرچ کی ہے اور کچھ لوگوں سے بات چیت بھی میری ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ سب چیزیں لے کر آ رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ بدروحیں اس رات میں جو ہالوین کی نائٹ ہے، یعنی جو 31 اکتوبر ہے، 31 اکتوبر، اس شام کو زمین پہ اترتی ہیں. اور جو ان کے مذہبی قسم کے لوگ ہوتے تھے، علماء ان کے جو ہوتے تھے مشرقین کے، وہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان سے مستقبل کے حالات، فارچون ٹیلنگ جو یا فیوچر کی جو باتیں ہیں وہ معلوم کرتے ہیں. تو اس موقع پہ پھر یہ لوگ بڑی بڑی آگیں جلاتے تھے، ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کے حضور قربانیاں بھی دیتے تھے، فصلیں اور اپنے جانور اس آگ میں جلاتے تھے تاکہ دیوتاؤں کے ہاں قربانی دے سکیں اور ان کو خوش کر سکیں. تو ایک تو یہ عقیدہ اس کے پیچھے پایا جاتا ہے. نمبر ٹو، اس دن کو شیطان کی برتھ ڈے کا دن کہا جاتا ہے. جو شیطان کے پجاری ہیں، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیٹن ورشپرز بھی ہیں دنیا میں، تو وہ اس کو ڈیولز ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں باقاعدہ ڈیولز ڈے. شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تو اس کو لوگوں کو بتوں کی طرف لانا پڑتا تھا، بتوں کی پوجا کی طرف کرنا پڑتا تھا ان کو، تاکہ وہ شرک کر لیں کسی طرح اور ان کی آخرت خراب ہو جائے. مگر آج تو اس کو ضرورت ہی نہیں، آج تو لوگ ڈائریکٹلی شیطان کے پجاری بن گئے. ایک ایسا مذہب ہے باقاعدہ سیٹن ورشپرز کا. اور آپ خود دیکھیں، चेक कर सकते हैं आप इंटरनेट पे कि ये लोग किस तरह इस दिन को मनाते हैं और किस कदर जोशो खरोश से मनाते हैं। और एक जगह तो मैं पढ़ रही थी तो बाकायदा वो लोग चर्च से नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि चर्च ने हमसे ये दिन ले लिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियन बना सके। तो ये तो असल में हमारा त्यौहार था और चर्च वालों ने हमसे चुराया। नंबर 3, इसके पीछे जो अकीदा आता है वो ये है कि मुशरिकीन का ये न्यू ईयर होता था, इसको ये न्यू ईयर के तौर पे मनाते थे, जो अपने देवियों देवताओं की पूजा करने वाले थे वो लोग मनाया करते थे। और इस रात को, ये जो 31 अक्टूबर की नाइट है, इसको मुशरिक लोग मौत का जो देवता था ना स्पेशली, उसके हजूर इबादत करते हैं। और आज तक भी कई ये कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है कि ये वो पुराने ही हैं। नंबर 4 ये कि इस शाम को समझा जाता है कि जो भी दुनिया से जा चुके हैं लोग, वो उनकी रूहें, उनको इजाजत मिल जाती है कि वो दुनिया में उतरें और लोगों में घुले मिलें। ये सिर्फ इस रात उनको इजाजत मिलती है। तो अभी तक भी, बल्कि यूरोप के कुछ हिस्सों में ये समझा जाता है कि मुर्दों की रूहें हमारी गिर्द हैं इस वक्त, और वो फिर आग वगैरह जलाते हैं ताकि उनको भगाएं। तो इस किस्म की कई रसूम आज भी हैं। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये समझते हैं कि डेड जो लोग हैं उनकी रूहें विजिट कर रही हैं जमीन पे। क्या आपका भी यही अकीदा है? अभी अगर इसका सारा पसे मंजर देखा जाए ना, तो ये सारा का सारा त्यौहार ही शिर्क, यानी देवी देवताओं के और इनके और शैतान और बदरूहों भूतों चुड़ैलों इसके गिर्द घूमता है। आप इसकी डेकोरेशन से ही आपको मालूम हो जाता तो होगा, और इसके मास्क, और आप जहां पे भी इसकी इंफॉर्मेशन लें सब जगह पे आपको यही मिलेगा। क्या हमारा यही कॉन्सेप्ट है? हम कहते हैं हम तो इस नीयत से करते ही नहीं है, हमारी तो ये नीयत नहीं है। मगर देखिए, अगर आप गले में सलीब लटका लें और कहें कि मैंने तो इस नीयत से नहीं लटकाई कि मैं क्रिश्चियन हूं, मगर आपको नहीं पता कि इसके पीछे क्या अकीदा है, ये कौन लटकाते हैं, असल में तो उसके पीछे जो अकीदा है वो है ना, आपको कहा जाए तो आप लटकाएंगे गले में? नहीं। तो इसको जहन में रखें कि इसके पीछे एक अच्छा खासा ऐसा अकीदा है जिसको कि हम एज मुस्लिम्स बिल्कुल किसी भी तौर पे अपना नहीं सकते। ये बिल्कुल हराम है, इसके अंदर शिर्क है। आप देखिए, इसकी जो जितने भी इसके साथ रिलेटेड काम है, मसलन आप कहें कॉस्ट्यूम्स पहनने का, तो ये वो क्यों पहना करते थे? ताकि ये जो बदरूह हैं जो दुनिया में आई हैं ये उनको पहचान ना लें। इसी तरह हवाई चीज़ें जैसे चुड़ैलें वगैरह, भूत वगैरह, ये उनकी नकाली में ये कॉस्ट्यूम्स पहनते थे कि इनको यकीन था कि ये लोग ज़मीन पे घूमती हैं। और इसी तरह कई बीस्ट किस्म के दरिंदों के कॉस्ट्यूम्स पहन लेते थे कि दरिंदों वाली चीज़ें, उसकी जैसी ताकत हमारे अंदर आ जाए और फिर ये चीज़ें हमारे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह ये जो पम्पकिन कार्व करना है, ड्राउनी शक्लों में इसको कार्व किया जाता है, इससे भी चुड़ैलों भूतों को डराया धमकाया जाता था। और ऐसी ये डेकोरेशन घरों के बाहर भी करते हैं ना, ताकि जो भी ईवल किस्म की स्पिरिट्स हैं वो भाग जाएं। फिर ट्रिक और ट्रीट, जिसको कि आप बिल्कुल ही बेजरर चीज समझते हैं कि तो बिल्कुल मासूम है, कोई बात नहीं, बच्चे अगर ट्रिक और ट्रीट कर लेंगे तो इसमें क्या हर्ज है? तो असल में बात यह है कि जो इनके मजहबी रहनुमा होते थे ना, ये मुशरिकीन के, ये जो देवियों देवताओं की पूजा करने वाले थे, ये घर घर जाया करते थे 31 अक्टूबर को, और लोगों से खास किस्म के खाने मांगते थे ताकि वो खाने उन चुड़ैलों भूतों के हजूर पेश करें और इनको राजी किया जाए। और अगर उनको ये खाने पेश ना हुए तो वो लोगों से नाराज हो जाएंगी, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर बीमारियां आएंगी, मौत आएगी, वो घर बचेंगे नहीं फिर। और अगर उनको खाने दे दिए तो खुशहाली मिलेगी। इसीलिए तो ये कहा जाता है ना, ये फ्रेज क्यों बनाए, ट्रिक और ट्रीट, ये अगर दोगे तो ट्रीट है तुम्हारे लिए और अगर ना दिया तो ट्रिक हो जाओगे, नतीजा तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। यानी मुर्दों की रूहों को या इन बदरूहों चुड़ैलों इनको अगर ईवल स्पिरिट्स को खुश ना किया गया तो फिर ट्रीट कोई नहीं मिलनी, ये तुम्हारे घरों में खुशहाली नहीं आएगी, इसलिए इनको दो वरना तुम वहां ट्रिक हो जाओगे। क्या एक मुसलमान को ये अकीदा जेब देता है? जो एक अल्लाह पे ईमान लाने वाला है वो कैसे सोच सकता है कि कोई और मुझे नफा या नुकसान पहुंचा सकता है, कोई और मेरी अच्छाई या बुराई में जरा सा भी हिस्सा डाल सकता है? ये तो आपने अल्लाह ताला के हाथ में जो पावर्स हैं, जो सिफात हैं उसकी, वो किसी और को दे दी। किस कदर मुशरिकाना अकीदा है ये। अल्लाह ताला ने तो फरमाया सूरह माईदा में, अफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून वमन अहसनु मिन अल्लाह हुक्मा लिकौमी योकिनून। क्या जाहिलियत के फैसले ये लोग चाहते हैं? और अल्लाह से ज्यादा अच्छा किसका फैसला हो सकता है? लेकिन किस कौम के लिए? जो यकीन रखती हो, उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हो, उनके लिए अल्लाह का फैसला ही काफी है। तुम क्या जाहिलियत के तरीके चाहते हो? इस्लाम के अलावा जो कुछ भी है वो जिहालत है, जिहालत के तरीके हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि आज 21st सेंचुरी में रहते हुए भी हम जिहालत के त्योहारों को मना रहे हैं, मुशरिकाना तरीकों को हम अपना रहे हैं। इस त्योहार के पीछे जो शिर्क है, जानते बूझते भी कि ये चुड़ैलें भूत, ये कोई जमीन पे नहीं आ सकता, ये बदरू हैं, जो बुरी रूहें हैं वो सिज्जीन में कैद हैं, कोई जमीन पे उतर नहीं सकती, तो हमारा नफा नुकसान पहुंचाने के साथ तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और हम इन चीजों पे यकीन रखें? ये शिर्क नहीं तो और क्या है? मासूमियत में इंसान शिर्क कर रहा है। लेकिन याद रखें, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जो गुनाह चाहे माफ कर दे मगर शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क चाहे छोटा है या बड़ा, शिर्क से हम सबको बचना है। ये ना हो कि हम मुसलमान कहलाएं, कलमा पढ़ें, मगर साथ साथ शिर्क भी करने वाले हों। तो शिर्क किसी सूरत नहीं माफ किया जाएगा, चाहे मासूमियत में या जानबूझ के। तो अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं यहाँ पे सूरह माईदा में कि तुम जाहिलियत के तरीके चाहते हो, जबकि अल्लाह ताला ने तो जो कुछ तुम पे नाजिल किया है वो तो सबसे बेहतरीन है, अल्लाह के फैसले सबसे अच्छे हैं, मगर तुम्हें जाहिलियत के फैसले अच्छे लगते हैं, उनके तरीके अच्छे लगते हैं। क्या ये जहालत के तरीके नहीं है? और क्या मुसलमान होते हुए हमें इन तरीकों को अपनाना चाहिए, या खुद को भी और अपने इर्द गिर्द वालों को भी, सबको मना करना चाहिए? तो सूरह निसा की आयत नंबर 48 है, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला शिर्क को नहीं बख्शेगा, इसके अलावा जो वो चाहेगा वो बख्श सकता है। व मन युशरक बिल्ला फ़कद इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। जिसने शिर्क किया अल्लाह के साथ तो इसने बड़ा बुहतान, बड़ा गुनाह कमा लिया। तो मेरी बहनों, हमने इन शिरकिया किस्म की रसूमात में हरगिज़ हिस्सा नहीं लेना, हरगिज़ इनका पार्ट नहीं बनना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। अगर हम मुशरिकाना लोगों की, उन लोगों की हम तरीके अपनाएंगे तो हम भी उन्हीं में से हैं, क्योंकि ये तरीके तो दरअसल क्रिश्चियंस के भी नहीं है। क्रिश्चियंस ने बहुत बाद में ये तरीके अपनाए, बल्कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं कई, उनसे भी बात हुई है, वो कहते हैं हम तो हेलोवीन नहीं मनाते। इस लफ्ज का ताल्लुक ना तो ईसाइत से है, ये हेलोवीन का जो लफ्ज है ये आपको बाइबल में भी नहीं कहीं मिलेगा, ये तो बाद में ही इन्होंने मुशरिकीन से लिया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इन आसमानी मजाहिब से, अहले किताब से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग भी देखा देखी उनके पीछे चलते हुए इन लोगों ने भी यही अकीदे अपना लिए, जैसे आज हम कर रहे हैं। तो इन चीजों को हमने अंधाधुंध फॉलो नहीं करना, इनको समझें हम। और फिर हम मुसलमान जो होता है ना, देखें वो बाशऊर होता है, कॉन्शियस होता है, अवेयर होता है, वो अंधा नहीं होता। अगर हम ये कहें कि बच्चों की खुशी के लिए हम करते हैं, क्या करें, बच्चे जिद करते हैं, बच्चों की खुशी है इसमें, तो बजाय इसके कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, उनका तो कसूर नहीं समझा जाएगा, मगर आप तो मासूम नहीं हैं, आप तो समझती हैं, फिर क्या बच्चों के सर पे डाल के हम फारे हो सकते हैं? क्या बच्चे को हम आग में डाल सकते हैं? शिर्क जो है वो इस कदर बड़ा गुनाह है, जिसको जुल्मे अजीम कहा गया। क्या आपका बच्चा आग मांगे तो आग देंगी उसको? कभी भी नहीं। तो जब आपको पता है कि ये चीज गलत है, तो फिर उस बच्चे को उसकी खुशी के लिए या उसकी जिद के पीछे क्या आप ये सब काम करने पे तैयार हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो माओं को खुद समझना है, बड़ों को समझना है, और जब आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे तो फिर बच्चे भी समझ जाएंगे। इसके सिलसिले में आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पहली तो ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप खुद अवेयरनेस पैदा करें, खुद मालूम करें पहले कि हेलोवीन है क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसको मामूली ना लें, ठीक है? अगर आपको अपने दीन से मोहब्बत है, अपने ईमान की कोई भी फिक्र है, इसको मामूली ना लें। फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को भी आगे समझाएं। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चों ने जो भी कहा, तो बच्चे हमारे आका हैं और हम उनके गुलाम हैं, जहां पे सही हो या गलत हो बच्चों को आप बताएंगे, आप वालदेन हैं, बच्चे आपके वालदेन नहीं हैं। वही कयामत की निशानियां ही आ गई हैं ना, जब लोग कहते हैं कि बच्चों के आगे हम नहीं कुछ बोल सकते, तो वो वही बात है जैसे हदीस में आता है कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। तो आज वही हाल हो गया कि अगर बच्चों की जिद इतनी ज्यादा आपके सर पे सवार हो जाती है कि आप बेबस हो गए उनके सामने, तो फिर तो कयामत की निशानी है ये। बच्चों को इंशाल्लाह जब आप लॉजिक से समझाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। आप उनको लॉजिक से समझाइए, उनको बताइए कि देखें, एक और फैक्ट आपके सामने रखती हूँ, आप इस तरह से भी बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। एक तो दीन के हवाले से जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप बात करें, दूसरे ये भी बताएं कि देखें आज 80 करोड़ लोग, 800 मिलियन लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं। हमारे अपने मुल्कों में बेशुमार लोग हैं जो गुर्बत की सतह से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और कहा जाता है कि ये यूएन की फूड प्रोग्राम की स्टेटिस्टिक्स हैं कि 5 सेकंड में हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख या उसके जैसी और चीजों की वजह से, वजूहात की बिना पे मर जाता है। और वहां पे हाल ये है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, बिलियंस, मिलियन नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल कैंडी पे और कॉस्ट्यूम्स पे खर्च किया जाता है। 2005 में हालोवीन पे 3.29 बिलियन डॉलर खर्च किया गया। तो क्या हमसे कयामत के दिन सवाल नहीं होगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? जो 5 सवालात होंगे जिसके बगैर कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। तो हदीस में जो 5 सवालात आते हैं, उनमें से एक सवाल ये भी है कि माल को कहाँ खर्च किया? ये माल तो अल्लाह की नेमत है, उसकी तरफ से अमानत है, इसे नेमत समझ के खर्च करें। ये ना हो कि हमारे इस तरह के खर्च करने से अल्लाह ताला वापस ले ले, छीन ले हमसे, किसी और को दे दे। और ये अमानत है हकदारों की, इसके अंदर यतीमों का भी हिस्सा है, इसके अंदर मिस्कीनों का भी हिस्सा है, रिश्तेदारों का भी हक है। तो आप चाहें तो बच्चों को इस तरह से आप एक मोटिवेट भी कर सकते हैं सदका के लिए भी, कि उनको बताएं कि इस त्योहार पे जो भी आपने खर्च करना है, इसकी बजाय क्यों ना ऐसे किसी बच्चे को दे दें जो आप जैसा ही है मगर भूखा सोया। वो हर रात भूखा सोता है तो आपके पैसों से वो पेट भर के खाना खा लेगा। आप खुद बच्चों से पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं। कहा जाता है कि एक एवरेज आदमी जो है वो इस त्यौहार पे तकरीबन $18 सिर्फ कैंडी पे खर्च करता है। एवरेज आदमी, जो ज़्यादा मालदार है वो तो इससे भी ज़्यादा खर्च करते होंगे, मगर एवरेज इंसान $18 सिर्फ कैंडी पे खर्च करता है। और कॉस्ट्यूम का भी खर्चा अगर इसके अंदर शामिल कर लें तो स्टेटिस्टिक्स बताती हैं कि $31.88 यानी $32 कर लें ये बनता है। और यकीन करें $32 जो आप एक दिन में खर्च करेंगे वो अगर आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह कहीं पे भी भेजें तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक बच्चा पूरे महीने खाना खा सकता है। तो अब आप खुद सोच लें कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ ज़्यादा नफ़ामंद है। फिर बच्चों को इसके नुकसान भी बताएं, सिर्फ अपने दीन के हवाले से नहीं बल्कि वैसे भी बताएं जो हर कोई मानता है कि ऐसे वाकया जो ये ट्रिक और ट्रीट करने के लिए बच्चे निकलते हैं तो ऐसे ऐसे हादसात भी पेश आ जाते हैं, कभी पॉइजनस कैंडी दे दी, कभी कुछ कर दिया, और इस चीज़ को ये सब मानते हैं। तो इसके डेंजर्स भी बताएं और फिर बच्चों से उस दिन के दिन नहीं उससे पहले ज़रा बात करें ताकि उनको पहले से पता हो कि हमने ये नहीं मनाना। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस दिन ऐसा आप इस शाम में कर सकती हैं कि बच्चों को और उनके दोस्तों को घर पे बुला लें और उनको जमा करके इस इवेंट के बारे में भी बताएं, इसके नुकसानात भी बताएं ताकि वो इससे दूर रह सकें। इस टाइम पे आप बच्चों को मस्जिद में भी ले जा सकती हैं कि मस्जिद में ले जाएं, ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेट है, क्यों ना करें। कुछ लोगों ने ये सजेशन दी थी कि हम अपने घर में पार्टी रख लें कुछ, तो ऐसा ना करें तो बेहतर है। ये ना हो कि बच्चे नेक्स्ट ईयर हालोवीन का ही इंतजार करने लगें कि चलो जी हालोवीन आएगी तो हमारे घर पार्टी होती है। तो फिर तो आपने उसमें ही पार्टिसिपेट कर लिया ना, अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा दूसरी ये बात है जो जहाँ तक स्कूलों का सवाल है तो आप अपनी बच्चे की टीचर को पहले ही से लेटर लिख दें और उसमें उनको बता दें कि हम नहीं ये सेलिब्रेट करते ड्यू टू रिलीजियस रीज़न और हमारा बच्चा किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही ये हालोवीन परेड या कॉस्ट्यूम वगैरह में। यकीन करें मेरे बच्चे के स्कूल से लेटर आया और उसमें जब सारा हालोवीन का बताया हुआ था तो नीचे प्रिंसिपल ने लिखा होता कि अगर आप नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते तो हमें बता दें। ऐसा किसी को भी कोई कंपल्सरी नहीं होता। मैंने आपको जैसे बताया कई क्रिश्चियंस भी नहीं इसको सेलिब्रेट करते, और जिस दिन भी हालोवीन की पार्टी है स्कूल में, हालोवीन की परेड है, उस दिन बच्चे को स्कूल ना भेजें, कोई हरज नहीं है। इतना बड़ा कोई तूफान नहीं आ जाएगा अगर एक दिन बच्चा स्कूल ना गया। ठीक है, आप एक लेटर भी लिख के पहले से भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस दिन ये पार्टी है या फंक्शन है तो उस दिन मेरा बच्चा नहीं आएगा स्कूल में। अगर खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो जाए तब भी तो छुट्टी कराते हैं ना, तो इस गलत चीज़ के बचने के लिए आप छुट्टी कराएं ज़रूर, बच्चे को घर रखें। इसी तरह आप ऐसा कर सकती हैं कि अपने घर के बाहर साइन लगा सकती हैं कि नो कैंडी, या आप ऐसा, कई लोगों ने ये भी सजेशन दिए हैं कि आप लाइट्स टर्न ऑफ रखें तो उससे भी लोग समझ जाते हैं। मगर एक बात जो समझने की अहम है वो ये है कि ना तो आप कैंडी दें और ना बच्चों को दिलवाएं, ना बच्चों को ट्रिक और ट्रीट पे लेके जाएं। और कुछ लोग नहीं लेके जाते अपने बच्चों को मगर जब उनके घर पे आके कोई बेल करता है तो कहते हैं नहीं हमने इनको तो दे देना, फिर अच्छा नहीं लगता। तो नहीं, वे फिर आप रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं ना अपने बच्चों को कि वो कहेंगे हमें तो मना करते हैं और इनको दे रही हैं, तो ये नहीं करना आपने। और बच्चे अगर बहुत ज़िद करें तो यकीन करें बच्चे इतने मासूम होते हैं, वो सिर्फ कैंडी से ही बहल जाएंगे, वो उसी से खुश हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं वैसे ही उनको कैंडी बाय कर लेंगे, लो बेटा तुम्हें कैंडी चाहिए थी तो ये लो मैंने तुम्हें ले दी, मगर ये नहीं हम सेलिब्रेट करेंगे, ना किसी के घर जाएंगे ना किसी को देंगे और ये गलत चीज़ है। तो वैसे ही उनको बाय कर दें कैंडी, वो भी फिर आप अपनी सुपरविजन में बाय करके देंगी, आपको खुद पता होगा कि कौन सी कैंडी बच्चे को लेकर देनी है और कितनी लेके देनी है। अच्छा, वैसे हम सारा साल चाहे बच्चों को दांतों की बीमारियों या दांतों में कीड़ा लगने के बारे में बताते रहें मगर हालोवीन पे खुली छुट्टी दे देते हैं कि आप जितनी मर्जी कैंडी बाय करो और जाके ट्रिक और ट्रीट में जितनी मर्जी कैंडी जमा कर लो। तो अगर आप किसी को और तरीके से मतलब इस चीज़ को यूज़ करना चाहती हैं, तो एक ये भी इसमें सजेशन हो सकती है कि जो बच्चे आपके घर आएँ तो कोई प्रिंट आउट ले लें या कोई बुक्स अच्छी रख लें, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं। दावा के कई प्रोग्राम होते हैं, कोई एक चीज़ उनको दे दें जहाँ पे आपको कहीं फ्री में दावा पर्पस से लोग देते भी हैं, फ्री बुक्स और सीडीज़ वगैरह भी मिलती हैं, तो कोई और चीज़ आप उनको कैंडी की बजाय दे सकते हैं। मगर बेहतर यही है कि आप बाहर साइन लगा दें, ये बेहतरीन है। एक और तरीके से भी आप बच्चों को बता सकती हैं, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी शक्लें दी हैं, तो क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं? और अगर हमारे शौक को देख के अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बना दे जिसको बनने के लिए हम कई डॉलर खर्च करते हैं, इतना बदसूरत बनने के लिए, तो वो हमें परमानेंट ही अगर ऐसा बना दे हमें हमारे से नाराज होके, तो क्या होगा हमारा? हम अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं ये मना के, क्या हम अल्लाह को नाराज कर सकते हैं? तो इन चीज़ों को बच्चों के सामने रखें, इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर मानेंगे। और इस बात को पहले से बिठा के बच्चों को बताएं। और इसकी जगह पे एक और सजेशन ये है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट करें किसी और चीज़ से। मिसाल के तौर पे आप बताएं कि ये देखो, ये हलोवीन मनाते हैं तो हमारे लिए ईद का दिन है, ईद पे को उनके लिए स्पेशल बनाएं ताकि उनके लिए ईद फन हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों के त्यौहारों का उनको बताएं कि ये उनका त्यौहार है, ये हमारा नहीं है। तो हमारे लिए ईद है, और ईद पे आप कैंडी लेकर आएं, ईद पे आप इनको फन कराएं, पार्टी अरेंज करें इनके लिए, इनके इन फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि उनके लिए ईद ही स्पेशल बन जाए। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जब आपको समझ आ जाएगी, जब आप इस चीज़ के ऊपर कायल हो जाएंगी कि ये सही नहीं है, तो इंशाल्लाह बच्चे भी मान जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल मचलता है और आपको खुद ही शरह सदर नहीं है, तो फिर बच्चे भी ज़ाहिर है ज़िद करेंगे, और फिर बहुत से बहाने हो सकते हैं मनाने के। मगर अगर आप इस पे फर्म हो जाएं, तो यकीन करें अल्लाह की मदद आपके साथ है फिर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और मौत तक हमें फरमाबरदारी की हालत में रखे। अल्लाह ताला हमें मौत भी आए तो मुसलमान की हैसियत से मौत आए, अल्लाह ताला की इताअत में मौत आए, उसकी फरमाबरदारी में मौत आए, और हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो या जिससे हम मुशरिकीन की तकलीद करें। अल्लाह ताला हमें भी, हमारी औलादों को, हमारे घर वालों को इन तमाम मुशरिकाना अकायद से दूर रखे और हमें बचा के रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।